आपका कहना यह है कि हम चाहते तो हैं ईश्वर की तरफ चलना, फिर भी बीच बीच में बार बार भूल क्यों जाते हैं, संसार में क्यों लग जाते हैं? एक शब्द तो आप जानते ही हैं जिसको विवेक कहते हैं। विवेक का यदि प्रैक्टिकल मीनिंग देखा जाए तो एक है अपने बारे में, मैं कौन हूं, मेरा बंधन क्या है। दूसरा है ईश्वर के बारे में, ईश्वर क्या है और वो हमको हमारे बंधन से या हमारे क्लेशों से, हमारे दुखों से वो कैसे छुटकारा हमको दिला सकता है। इस विज्ञान का यदि ठीक प्रकार से ज्ञान हो तो इसी का नाम विवेक है। तो सबसे पहले तो हम अपने बारे में ही ठीक ठीक नहीं जानते, अपना ही विश्लेषण करना ठीक ठीक नहीं जानते कि मैं वास्तव में हूं कौन और मेरा बंधन क्या है। महाराज जी तो हमारे बारे में साफ साफ वाणी में कह रहे हैं, ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत, मंगत खोज सत शांति, औध जात है बीत। औध कहते हैं अवधि को, या जो आयु मिली है हमको शारीरिक जीवन जीने के लिए, ये औध है। तो ये संसार हमारे लिए सराय की तरह से, धर्मशाला की तरह से, जीव मुसाफिर नीत, और जीव यानी मैं, नित्य का मुसाफिर हूं, परमानेंट मुसाफिर। मुसाफिर किसे कहते हैं? जिसका कोई ठिकाना नहीं होता। लक्ष्य तो होता है मुसाफिर का, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं होता, इसलिए वो मुसाफिर। जब तक वो अपने ठिकाने पे पहुंच नहीं जाता उसको मुसाफिर कहते हैं। तो मुझको अपने बारे में यही नहीं पता कि मैं जीव हूं या शरीर हूं। तो इस जीव के लिए अपना ही ये शरीर धर्मशाला की तरह से है। तो कुछ दिन के लिए आदमी धर्मशाला में ठहरता है, उसी प्रकार इस देह के अंदर जीव कुछ दिन कुछ वर्षों के लिए ठहरता है। फिर अपनी मंजिल तलाश करने के लिए चला छोड़ के चल देता है। जब तक उसकी मंजिल मिल नहीं जाती, उसको ठिकाना मिल नहीं जाता जीव को, तब तक हमेशा ये परेशान रहेगा, क्योंकि मुसाफिर चैन में नहीं जीता। हमेशा उसके मन में एक ही तड़प रहती है, एक ही लगन रहती है कि कितनी जल्दी हो मैं अपने ठिकाने पर पहुंच जाऊं, क्योंकि ठिकाने पर पहुंच कर चैन मिलेगा। हर मुसाफिर के अंदर यही व्यक्ति होती है। इसलिए वाणी हमको याद दिला रही है और निर्णय भी कर रही है, ये संसार सराय की तरह से। मां जी कहते हैं देह और संसार एक ही चीज है, देह करके संसार है, जैसी जिसकी देह है वैसा ही उसका संसार है। हम इन दोनों को अलग करके देखते हैं। तो हमने यदि अपने बारे में और ईश्वर के बारे में समझना है तो सारा जो हमारा चिंतन है वो वाणी के आधार पर होना चाहिए। अभी देह आपकी मौत को प्राप्त हो जाए तो संसार आपके लिए खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बच जाएगा? देह तो खत्म हो गया, आप संसार को देखते रहोगे, ऐसा होगा कभी? देह जितनी बार प्रकट होगी उतनी बार संसार प्रकट होगा। और इसीलिए सत्पुरुष जो हैं बार बार स्वप्न का उदाहरण देते हैं कि स्वप्न में आपकी नई देह प्रकट होती है। ये देह तो आपकी खाट पर सो रही है, लेकिन जब स्वप्न की रचना होती है तो आप ही उस स्वप्न की रचना में व्यवहार करते हो, कर्म करते हो, सुख दुख भोगते हो। तो वहां पर जो देह प्रकट हुई है उसके साथ संसार भी प्रकट हुआ। जब जागते हो तो वो देह भी खत्म, वो संसार भी खत्म। अब आपके पास ये देह और ये संसार है। तो इसीलिए देह और संसार एक ही चीज है। तो ये संसार सराय का मतलब होगा, ये देह इस जीव के लिए सराय की तरह से है या सराय ही है। तो जीव मुसाफिर नीत, तो अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए कुछ दिन इसको ठहरने के लिए इस देह में मिले हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने धर्मशाला को ही अपना घर समझ लिया और इसी को अपनी मंजिल भी समझ ली। ये हमारी बेहोशी की हालत है, या महाजी कहते हैं ये हमारी भ्रम की हालत है। ये जीव के अंदर बहुत गहरा भ्रम बना हुआ है कि मैं देह हूं। इसलिए वाणी याद दिला रही है, मंगत खोज सत शांति औध जात है बीत। तेरा हर वर्ष बीत रहा है, तूने शांति की खोज करने के लिए इस देह में प्रवेश किया था, इस देह को धारण किया था, और तू उसको तो भूल गया और भोगों में फंस गया। और भोगों के बारे में महाराज जी क्या निर्णय कर रहे हैं? देखो, वाणी तो निर्णय करेगी, सीखेंगे कहां से? गुरु इसलिए तो धारण किया जाता है। गुरु पर जब विश्वास आता है, श्रद्धा आती है, उसका मतलब ये होता है कि उसके वचन पर श्रद्धा आ रही है, उसकी वाणी पर श्रद्धा आ रही है, वही तो हमारा मार्गदर्शन करेगी। महाराज जी की शक्ल तो हमारा मार्गदर्शन नहीं करेगी। तो जो हम संसार में कर्म कर रहे हैं भोगों की प्राप्ति के लिए, धन एकाग्र कर रहे हैं, एकाग्र कर मतलब कि इकट्ठा कर रहे हैं, वस्तुएं इकट्ठी कर रहे हैं, तो उसके बारे में वाणी क्या निर्णय कर रही है? कि जो कुछ भी कर रहे हो इसका परिणाम पता है क्या है? इसका परिणाम है पांच विकार महा दुखदाई जले सकल संसारा। कि मेरा जितना भी कर्म है, जितनी भी सोच है और जितना भी भोग विलास है, जितना भी मेरा मनोरंजन है, ये पांच विकार युक्त है, यानी पांच विकारों का फैलाव है। जीव जब विकारों में फंसेगा तो जलेगा या शांत रहेगा? विचार करो। वाणी तो करिए मंगत खोज सत शांति, सत शांति की खोज करनी, और तू क्या कर रहा है? गुरु तेरा कोई है नहीं, मन को तूने गुरु बना लिया है, अपना ही मन तेरा गुरु। और जो इच्छा मन में उठती है आंख बंद करके लग जाता है पीछे उसको पूरी करने, कहता है पूरी कर लूंगा मैं इच्छा तो शांति मिल जाएगी। और गुरु कह रहा है कि शांति नहीं मिलेगी तुझे, ये पांच विकार मिलेंगे तुझे जिसमें तू जलेगा। और जैसे जैसे तेरी आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे इच्छाएं पूरी करेगा तू, ये पांच विकार तेरे बढ़ते चले जाएंगे, इसके संस्कार और गहरे होते चले जाएंगे। तो जिस मुसीबत को लेकर पैदा हुआ था तू, उस मुसीबत को बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है तुझे इस बात का होश ही नहीं कितनी भी चतुराई क्यों नहीं कर ले, कितनी भी होशियारी तो अपनी क्यों नहीं दिखा ले, तू करेगा यही बस, इससे हटके तेरा कोई प्रोग्राम ही नहीं। जिसको हम पारिवारिक जीवन सामाजिक जीवन कहते ना, वो ये जीवन है। इसी को माँ जी मादा परस्ती कहें, इसी को मेटीरियलिज्म कहते हैं, इसी को माँ जी भोगवादी भी कहते हैं, कंज्यूमर कल्चर। जितना ज्यादा कंज्यूम कर लोगे उतने ज्यादा बच्चे तुम्हारे खुश हो जाएंगे, उतने ज्यादा तुम खुश हो जाओगे। तुमको यह पता नहीं, तुम जहर बच्चों को पिला रहे हो, जहर खुद पी रहे हो, पता ही नहीं, विवेक ही नहीं, क्योंकि हमने जो कुछ भी सिखा है संसार की नकल करके, संसार की नकल मनुष्य को धोखे में ले जाती है। इसलिए उसको कहा जाता है कि बिना गुरु के गति नहीं। तेरे जीवन की, या यूं कहिए जीवन जीने की जो दिशा है, दशा है, वो बिना गुरु के कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए यदि तूने इंसान का चोला पाकर ठीक चलना है मनुष्य जन्म में, तब तुझको गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना ही पड़ेगा, उसकी शिक्षा को सीखना ही पड़ेगा। और यदि पछताने के लिए जीना है तो संसार की नकल करो, जैसा हम आज तक जीते चले आए हैं ऐसे जीते चले जाओ। ईश्वर तो बेचैन नहीं हो रहा, बेचैनी तो मेरे अंदर है, गुरु भी बेचैन नहीं हो रहा है, बेचैनी तो मेरे अंदर है। मैं गुरु के पास जा रहा हूं अपनी बेचैनी दूर करने की। तो यदि मैंने मनमानी शिक्षा के अनुसार चलना है तो काहे को गुरु का नाम देता हूं, काहे को गुरु को बदनाम करता हूं। मैं मंगतराम का शिष्य हूं, मेरी बड़ी श्रद्धा उनके ऊपर है, बड़ा उनको मानता हूं मैं, क्यों ये झूठ बोलते हो? तुमने आज तक ये नहीं सीखा कि गुरु को मानने का मतलब क्या होता है, गुरु बनाया क्यों जाता है, ये नहीं सीखा आज तक। गुरु इसीलिए बनाया जाता है कि मेरा ये भ्रम टूट जाए कि मैं शरीर हूं, और ये भ्रम भी टूट जाए संसार में सुख है। इस संसार में पांच विकार मिलते हैं, हम सब मिलकर परिवार में पांच विकार की कमाई करते हैं। और गुरु हमको पांच विकार से मुक्त होने की कमाई करना सिखाता है। तो गुरु के मार्गदर्शन में और संसार के मार्गदर्शन में ये बेसिक अंतर है। पूरा का पूरा संसार आपको पांच विकारों की कमाई करना सिखाता है। केवल गुरु है ऐसा जो आपको इन पांच विकारों से मुक्त कैसे हो गए इसकी कमाई करना सिखाता है। तो वाणी का ये निर्णय आपकी बुद्धि यदि स्वीकार ही नहीं कर रही है तो तुमने वाणी को समझा क्या है? कभी सोचा वाणी के बारे में बैठ के? सुनते रहे खाली, ये साधारण वाणी नहीं होती है। ये समझो वाणी को, वो कह रहे हैं कि पांच विकार महादुखदाई, ये महादुखदाई है। आपके बच्चों का निश्चय भी ये नहीं है, आपकी पत्नी का भी ये निश्चय नहीं है, आपके पति का भी निश्चय ये नहीं है, समाज का भी ये निश्चय नहीं है, गुरु का निश्चय ये, गुरु का निर्णय ये, पांच विकार महादुखदाई। और कैसा दुखदाई है? जले सकल संसार, इन पांच विकारों में सारे जीव जंतु और मनुष्य सब जल रहे हैं, अर्थात बेचैन हो रहे हैं। तो यदि आपने यही नहीं सीखा, आपने इस बात को हजारों बार सुन चुके, आज तक कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, तो आपने कहां चलना है? आपकी यही दुर्दशा होगी। पढ़ते तो बार बार हैं इंद्रियों के भोगों में सत असत का विचार करना चाहिए। सत असत का मतलब है इंद्रियों भोगों में उचित अनुचित। मैं स्वाद पूरे करने के लिए खा रहा हूं या भूख मिटाने के लिए खा रहा हूं, यह है उचित और अनुचित। कहते तो ये हो कि मैं हेल्थ ठीक रखने के लिए खा रहा हूं, लेकिन सत्य यह है कि ज्यादातर लोग हेल्थ बिगाड़ने के लिए खाते हैं। जो स्वादिष्ट पदार्थों का भोग विलास करते हैं, रेस्टोरेंट का, होटलों का भोग विलास करते हैं, तरह तरह के नए नए आइटम बनाना सीखते हैं और खा के खिला के बड़े खुश होते हैं, उनको ये पता नहीं है यही आपके शरीर की बर्बादी का कारण है। ये तो इतने ब्लड प्रेशर, इतने शुगर, इतने हार्ट अटैक क्यों होते हैं? पैसा तो बढ़ गया, पहले तो भूख से लोग मरते थे, आज खा के मरते हैं। तो ये दिन क्यों आ गए, खाने से भी डरने लगे हैं। क्योंकि जिंदगी का राज क्या है वह हमने कभी सीखा ही नहीं, गुरु कभी कोई बनाया ही नहीं हमने। माथा बहुत मंदिरों में टेकते रहे, सत्संगी बहुत सुने होंगे, लेकिन कभी सोचने की जरूरत ही नहीं समझी कि इस गुरु ज्ञान का, शास्त्रों के ज्ञान का राज क्या है। कभी उसके प्रति गंभीर हुए ही नहीं। तो फिर यही दुर्दशा हमारी होनी है जो हो रही है। हर वर्ष बीत रहा है, बूढ़े हो गए हम में से कुछ, तो कुछ को तो मौत की याद आती होगी, अरे अब तो नजदीकी आ गई है। लेकिन करनी याद करो, कहां पहुंची आप। करनी पांच विकार में ही खड़ी हुई, अभी भी उसके लक्ष्य बनाए हुए। बच्चों का भी कल्याण सोच रहे हैं, इसी से हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो इसीलिए महाराज जी ने निर्णय दिया समता विलास के अंदर कि राजबल से, तपोबल से, ज्ञान बल से, इन भोगों को मर्यादा में इकट्ठे करने की कोशिश करनी चाहिए। राजबल से का मतलब राजा को या सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए कि लोगों का भोग विलास ना बढ़ पाए, कम खर्च में जीवन चलाने वाली स्कीम होनी चाहिए, ताकि लोग शांति के साथ निर्विकार हालत पाने के लिए सतमार्ग पर अग्रसर हो सकें। तो देश का भी जीवन इस डायरेक्शन में ही होना चाहिए, ऋषि ऐसा कह रहा है। यह है सामाजिक जीवन, किसको होश है आज, सभी बिगड़े हुए। एक ही होश है सारी गवर्नमेंट को कि चकाचौंध बढ़ा दो, सुख सुविधाएं बढ़ा दो। अरे जिनके पास नहीं है, घर से मार्केट जाने के लिए सड़क नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है साफ, रहने को घर नहीं है, ये स्कीम यदि गवर्नमेंट पूरी करे बात समझ में आती है, बेसिक नीड्स हैं आदमी की। लेकिन अमेरिका की बराबरी कर लो, चाइना की बराबरी कर लो, ये कौन सी स्कीम होगी, ये तो नकल हो गई। ये स्कीमें बना के वो कितने संभल गए, हिंदुस्तान से ज्यादा भ्रष्टाचार चाइना में है। तो उसके पास जब पैसा बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। और अमेरिका में क्या भ्रष्टाचार की कमी आप समझ रहे हैं, पूरी दुनिया में क्या क्या किया है उसने, अमेरिका ने, आप जरा विचार की आंख से देखो तो पता लग जाएगा। कितने लोगों का मूर्ख बनाकर पैसा कमाया है, अपने भोग वाला से इकट्ठे किए, कितने देशों पर कब्जा करके अपना संपत्ति बढ़ाई है, सारा इतिहास उठा के देखो पता लग जाएगा। तो बात ये किसी देश की नहीं हो रही है, किसी व्यक्ति की भी नहीं हो रही, बात इस प्राकृतिक विज्ञान की हो रही है जिसके बारे में सतपुरुष निर्णय कर रहे हैं। वो कहते हैं प्रकृति का स्वरूप यही है, यहां जो भी ज्यादा सुविधाएं बढ़ाएगा, मर्यादा का उल्लंघन करेगा, उसके पांच विकार बढ़ेंगे, उसको ये होश होना चाहिए। जिसकी बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ जाए, वो राक्षस हो जाएगा या इंसान रहेगा वो। उसने लोगों को परेशानी करना है और क्या करना है। और हर रोग को हम जानते हैं समाज में क्या हो रहा है। ये काम विकार है जिसको सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं, जब ये समाज में बढ़ती है तो क्या हाल होता है देखो, कितने कांड होते हैं इसके चक्र में। जब क्रोध बढ़ता है लोगों में, क्रोधी आदमी क्या करता है, किसी को भी मार देगा, किसी को भी मिटा देगा, क्रोध दिला दो उसको। लोभी आदमी क्या करता है, कितनी रिश्वतें लेता है, कितने महल बनाता है, इकट्ठा करते करते अरबों खरबों इकट्ठे कर लेता है, तब भी संतोष नहीं होता। दुनिया के जो खरबपति लोग हैं वो सारी गवर्नमेंट को अपनी उंगली पर नचाने की कोशिश करते हैं। सारी स्कीम ऐसी बननी चाहिए कि हमारी कंपनी को फायदा हो। तो क्या है ये संतोष है या असंतोष है, जब विचार करके तो देखो। तो उनको संतोष नहीं हुआ, मुझको कहां से संतोष हो जाएगा। तो सत्पुरुषों की बात को समझना चाहिए कि पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं, लेकिन पैसा बढ़ने से लोभ की वृद्धि होती है और लोभ मनुष्य को चौपट कर देता है, ये विकार है। तो इसीलिए पांच विकार जब बढ़ते हैं आपके, तो ईश्वर आपसे बहुत दूर हो जाता है, शांति का रास्ता आप भूल ही जाते हैं पूरी तरह से। ऐसे मनुष्य आम मिलेंगे आपको संसार में कि आप उनको ईश्वर मार्ग पर लगा ही नहीं सकते, आप उनको समझा ही नहीं सकते कि सत्संग अच्छी चीज है। वो कहेंगे ये तो वक्त की बर्बादी है। तो इसीलिए ये आम बात नहीं हो सकती, ये खास बात है, ये खास लोगों के लिए। इसलिए गीता में कहा गया हजारों में से कोई एक इस मार्ग पर चलता है, हजारों में से कोई एक मनुष्य होता है जिसके अंदर ये समझ टिकती है या ये विवेक टिकता है। तो वो ये बात सोचता है कि मैं जीव हूं। केवल जीव शब्द सुनने से क्या हो जाएगा, उससे तो कुछ नहीं होगा। तो जीव कौन है? तो जीव मैं हूं ना। तो मैं यदि अपने बारे में सोचूं कि मेरे मन के अंदर कोई इच्छा उठती है, कोई संकल्प उठता है, या यूं कह लें कोई विचार उठता है, उस विचार के कारण मुझको बेचैनी होती है, इसलिए उस विचार के अनुसार मैं प्लानिंग करता हूं, उस इच्छा के अनुसार मैं प्लानिंग करता हूं, उसको पूर्ण करने की फिर देह के इस देह का उपयोग करता हूं, उसको पूर्ण करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो मैं अपने ही मन की इच्छा के कारण बेचैन हो रहा हूं, जो बेचैन हो रहा है वही तो मैं हूं, उसी का नाम जीव है। ये जिंदा जीव जिंदा वस्तु है। मैं तो हवा गर्म चले उसके कारण भी बेचैन हो जाता हूं। तो हवा क्या जिंदा वस्तु है? हवा तो जिंदा वस्तु नहीं। जैसे हवा के कारण मैं बेचैन होता हूं, उसी तरह से मन के कारण भी मैं बेचैन होता हूं। मन में विचार उठते हैं तो बताइए, मन तो जड़ हुआ ना, मैं चेतन हूं, मेरे अंदर होश है। तो जिसमें होश है उसको जीव कहते हैं, और देह भी जड़ है, इस देह का उपयोग कर रहा हूं मैं। मेरे मन में इच्छा उठ जाए कि मैंने मसूरी जाना है, मसूरी देखना है, अब मैं परेशान हो जाऊं अंदर से, अरे भाई मौका है फिर निकल जाएगा, फिर मौका मिला नहीं मिला, पता नहीं कोई जाने देगा नहीं जाने देगा, सब उधेड़ बुन चल रही है आपके अंदर, इच्छा आ गई आपके अंदर, उसने बेचैन कर दिया आपको। अभी यदि आपने निर्णय कर लिया कि जरूर देखना है, अब बेचैनी सहन नहीं हो रही है, तब आप निर्णय कर लेते हो कि मैंने जाना। तो जाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? देह का इस्तेमाल करोगे नहीं करोगे? इस देह को मसूरी ले जाओगे? तो देह तो जड़ चीज है। जैसे कार में बैठ के आप मसूरी पहुंच गए, कार आपको मसूरी ले गई, तो कार में कोई जान है क्या? आप जानते हो कार जड़, मैं चेतन हूं। जो अनुभव करने वाला है वो उसको चेतन कहा जाता है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो जड़ नहीं है। तो जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है, जिसमें होश है, वो सुख और दुख का अनुभव करता है। लेकिन मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं और कहता हूं कितना बुद्धिमान हूं, आज तक मैंने अपने बारे में ही ABCD नहीं सीखी। दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में ये बात सिखाई जाती है? कभी सुना है आपने? पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, किसी में ये बात सिखाई जाती है? तू कौन है? गुरु बनाया तो हमको विचार करने का मौका मिल रहा है। गुरु कह रहा है ये संसार सराय जीव मुसाफिर नीत। तो बताइए, जीव चैन प्राप्त करने के लिए इस देह को मसूरी ले जा रहा है। चलो एक बार घूम लो मसूरी, यदि आपकी जेब में पैसा रहा तो मसूरी देख के आप शांत हो जाओगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, देश के सारे स्थान देख मारोगे पहले आप, फिर भी चैन नहीं पड़ेगा। फिर विदेशों की तरफ नजर करोगे, अब मलेशिया घूमिया है, अब सिंगापुर घूमिया है, अब अमेरिका घूमिया है, यदि पैसा है तो सब प्रोग्राम पूरे करोगे। तो घूमने का विकार बढ़ा या कम हो गया भाई? संसार में बेअंत माया है, इसका कोई अंत नहीं है। ना खाने की चीजों का अंत है, ना देखने की चीजों का अंत है, ना सुनने की चीजों का अंत है, ना भोग विलास का अंत है। हर चीज की अनगिनत वैरायटी है। तो आपकी बेचैनी मन के अंदर जब इतनी इच्छाएं बढ़ेंगी तो कम होगी या बढ़ेगी? तो सत्य हमारे बारे में यह है कि मनुष्य जैसे जैसे संसार का भोग करता है इसकी बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि मन के अंदर इच्छाओं की तरंगे बढ़ जाती है और हर इच्छा की तरंग इस जीव को बेचैन करती है। तो जब ये कभी भाग्य से सत्पुरुष के संपर्क में आता है, उसके ज्ञान के संपर्क में आता है, तब ये सोचना शुरू करता है कि अरे इतना पुरुषार्थ कर लिया, इतना पैसा कमा लिया, इतना भोग विलास कर लिया, बेचैनी मेरी कम नहीं, मेरे अंदर दोष बढ़ गए, वही ये पांच विकार बढ़ गए आपको, जिसको संसार सिखाता ही नहीं आप। तो इसीलिए अब गुरु कहता है कि जिस प्रकार से इस देह के अंदर मन उपस्थित है जिसके कारण तू बेचैन होता है, इसी प्रकार से इस देह के अंदर वो जीवन सत्ता भी मौजूद है जिसका नाम ईश्वर है। तेरी इस मशीन को, तेरी इस देह को वो ईश्वर सत्ता चला रही है, तू नहीं चला रहा। जितने दिन उसने इसको अलॉट कर रखे हैं, जितनी अवधि जीने के लिए दे रखी है इस देह को, उतने दिन देह जीवित रहेगी, कोई डॉक्टर बचा नहीं सकता तुझको, इस बात का होश नहीं, तुझको इस बात का ही होश नहीं है। तेरी देह को जो जिंदा रखे हुए है वो इस देह के अंदर मौजूद है और तुझे उसका होश ही नहीं है। तो गुरु उसकी याद दिलाता है, गुरु का जीवन उसकी याद दिलाता है। महाराज जी का जीवन देखो, महाराज जी कहते हैं प्रेमी, देवराज जी से कहते हैं तू क्या करिश्मा देखना चाहता है, तुझको भूख लगती है इनको भूख नहीं लगती, तुझको प्यास लगती है इनको प्यास नहीं लगती, तुझको नींद सताती है इनको नींद नहीं सताती। भूख प्यास नींद से जो मनुष्य ऊपर है, इससे बड़ा और क्या करिश्मा होगा? तो गुरु के जीवन को देख के पता लगता है गुरु के अंदर वो शक्ति काम कर रही है, गुरु उस शक्ति में स्थित है, या यूं कहें गुरु खुद वो शक्ति है जिसको हम ईश्वर कह रहे हैं, इसलिए वो देह के बंधनों से मुक्त है, देह के विकारों से वो मुक्त है। तो गुरु की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि ईश्वर है, वो देह के अंदर ही मौजूद है, और केवल वो है नहीं, वो शांत रूप है। देश का बंटवारा हो गया, महाराज जी का आश्रम था गंगोठिया में, वो छूट गया, पूरी संगत कितनी मुश्किल से तैयार की होगी संगत, कितने सम्मेलन करके तैयार की होगी संगत, सारी संगत छूट गई, सब संगत बर्बाद हो गई, गुरु को भी वो देश छोड़कर हिंदुस्तान में आना पड़ा। लेकिन उनके अंदर कोई बेचैनी नहीं, जो प्रेमी जिंदा बच गए वो तो बड़े बेचैन थे, लुटे तो महाराज जी थे, लुटे प्रेमी थे, महाराज जी के अंदर कोई बेचैनी नहीं, सारे प्रेमी महाराज जी के पास इकट्ठे हुए शांति प्राप्त करने के लिए। क्यों इकट्ठे हुए? उनको दिखाई पड़ रहा है कि महाराज जी के अंदर अभी भी शांति मौजूद है, हमारी शांति गायब हो चुकी। तो क्या था महाराज जी के पास? ना मकान था, ना एक ट्रंक था बस बिस्तर कपड़े जिसमें होते हैं, ना पैसे थे महाराज जी के पास, फिर भी शांति बनी हुई है उनकी।
तो गुरु का जीवन ये सिखाता है आपको कि ईश्वर है और इस देह के अंदर मौजूद, और केवल है नहीं, वो मार्गदर्शन भी करता है, वो आपको गाइड करता है, वो बोलता भी है। महाजी के अंदर से वाणी पैदा हो रही है, नहीं हो रही? महाजी तो नहीं बनाई वाणी, ईश्वर की आवाज उस देह से बाहर निकल रही है, नहीं निकल रही? विचार करके देखो यार, इसीलिए हमारे अंदर ये बातें आती ही नहीं है। ईश्वर एक जिंदा वस्तु है, बोलने वाली वस्तु है, मेरी केयर करने वाली वस्तु है, मुझ पर कृपा करने वाली वस्तु है। वो ऐसी सत्ता है जो मेरा सब कुछ है, और ये संसार वो सत्ता है जो एक दिन मेरा सब कुछ लूट लेगी, मुझको मार के ही छोड़ेगी। तो ईश्वर तो तुमको जीवन देगा और संसार तुमको मौत देगा, तुमको इस बात का होश नहीं है। लेकिन जब तक आप वाणी पर इस प्रकार से विचार नहीं करोगे जैसे आपके सामने हो रहा है, आप इन भोगों को नहीं छोड़ोगे, हेरा फेरी सारी जिंदगी करते रहोगे, बातें ईश्वर की करोगे लेकिन कर्म वही करोगे जो बंधन वाले। तो इसलिए महाजी ने कहा, समझने के बाद भी मन एकदम से तैयार नहीं होता, देह एकदम से तैयार नहीं होती उस प्रोग्राम पे चलने के लिए, या यूं कह रहे कि जीव एकदम से तैयार नहीं होता, इसलिए वो प्रोग्राम आपको देते हैं। महाजी ने 5 नियम का प्रोग्राम दिया, जीवन में सादगी धारण करो। सादगी का मतलब यह है, सिंपल मतलब कि भोग विलास को बढ़ाओ मत, कम करने की कोशिश करो, बहुत आगे निकल जाओ, नकल मत करो दूसरों की, फैशन क्या चल रहा है आज। ईश्वर तुझको चाहिए, तकलीफ तुझको हो रही है, तो अपने इलाज के लिए सादगी का सूत्र धारण कर। सत्य का पालन करने की बात कर रहे हैं, सत्य का पालन किस आधार पर होता है? एक ईश्वर पर भरोसा रख कि तेरे प्रार्थ के अनुसार उसने जो निश्चित कर दिया है वो मिलेगा तुझको, ना कम ना ज्यादा, तेरे सुख दुख ईश्वर के हाथ में, इसलिए उसका भरोसा मत छोड़। तो झूठ, मकारी, बेईमानी, धोखा देना लोगों को, ये झूठ बोलना क्या होता है? झूठ बोल के अपना उल्लू सीधा करता है ना इंसान, तो ये चालाकियां मत करो। ईश्वर पर भरोसा रख, तेरा भाग्य संसार बनाने वाला नहीं है, वो बना बनाया है ईश्वर के पास, वो अंतर्यामी, उसके अनुसार तेरे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, काम बनेंगे भी बिगड़ेंगे भी, मित्रों से भी तेरी भेंट होगी, दुश्मनों से भी तेरी भेंट होगी, वो तेरा प्रारब्ध में डिसाइड करेगा। इसलिए तू किसी को धोखा देने की कोशिश मत कर, ईश्वर पर भरोसा रख। इसीलिए वो कहते हैं कि संसार में निष्कपट होकर लोगों के साथ व्यवहार कर और अपनी कमाई कर। तीसरी बात, वो सेवा की करते हैं, देखो तो जीने का रास्ता बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, कौन सा कठिन है ये? कि तू तो जो स्वार्थ भावना से जीता है कि हर व्यक्ति मेरे लिए करे, अरे हर व्यक्ति तेरे लिए करेगा तो 5 विकार तो बढ़ा के जाएगा, तू 5 विकार बढ़ाएगा या घटाएगा? तो इसीलिए उसका रास्ता क्या है कि तू दूसरे के लिए करने की कोशिश कर, जो कुछ भी कर सकता है, चाहे घर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं। हम क्या सोचते हैं, इसने मेरे साथ क्या किया, मैं भी इसके साथ वैसे ही करूंगा, टिट फॉर टैट का सूत्र पाते हैं, ये संसारी मार्ग है, बेचैनी का मार्ग है। तूने ईश्वर के रास्ते पर चलना है, उसके लिए जीने का तरीका ये है कि तेरी दृष्टि ये नहीं होना चाहिए, ये चालाक आदमी है देखो अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है ना। तेरा जहां मौका मिलता है, तुझको जहां मौका मिलता है, तू उसके लिए क्या कर सकता है, बस वहीं तक सोच सीमित रखता है। तो लोगों से आशा मत रख, तुझको देने वाला ईश्वर अंदर बैठा हुआ है, तो उसके आश्रय जी। तो संसार में निष्काम सेवा भाव से जीने की कोशिश कर, और ये सब करने के लिए समझ कहां से आएगी? समझ सत्संग से आएगी, सत्विचार से आएगी। इसलिए ऋषियों की वाणी, ऋषियों के वचन गहराई से पढ़ने की कोशिश कर। गहराई का मतलब होता है कि पढ़ने के बाद उस पर गहरा मनन कर, उसका डिटेल्ड चिंतन करने की कोशिश कर, ताकि बुद्धि में बाट वो बैठ जाए, फिसल ना जाए। तो ये जो सत विचारों से प्रेम, इसके लिए स्वाध्याय, इसके लिए सत्संग का श्रवण, ये बार बार करना पड़ता है, तब आपकी बुद्धि का होश बना रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि 24 घंटे मैं मन के संकल्पों को याद रखता हूं, उन विचारों को याद रखता हूं, उन विचारों में ही जीता हूं। इसके मुकाबले में तुम्हें अंतर्यामी ईश्वर की याद करनी है, वो परम सुखदायी है, परम आनंद रूप है, वो मोक्ष रूप है, जन्म मृत्यु से छुटकारा देने वाला है, तेरी देह का मालिक है, तेरी सारी सृष्टि का मालिक है। ऐसा ईश्वर तेरी देह के अंदर उपस्थित है, तू उसको भूले बैठा हुआ। यहां आके पता लगता है कि महाजी ये बात समतावलास में क्यों लिख रहे हैं कि कम से कम एक घंटा सुबह, एक घंटा सायकाल ईश्वर की उपासना करनी लाजमी है, कंपल्सरी, नो चॉइस, ये मिनिमम प्रोग्राम दिया है। इसलिए साथ में लिख रहे हैं, खाना खाने से भी ज्यादा जरूरी सिमरन को समझना। और हम कहते हैं मुझे तो बड़े काम है, इतना टाइम तो मैं निकाल ही नहीं सकता। तो तेरा बचाने वाले दुनिया में कोई नहीं है, कोई गुरु नहीं है फिर तेरा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तेरी जीवन की है, पूरा जीवन जिस पे आधारित है, उसके लिए टाइम ही नहीं तेरे पास। कहता है मैंने तो बच्चे पालने हैं, मैंने तो पैसा कमाना है। तो जिसको तूने उचित समझा, उसको जीवन का लक्ष्य बना लिया। ईश्वर भक्ति को उचित समझा ही नहीं तूने, उसकी जरूरत ही नहीं समझी तूने, इसलिए उसके लिए बहाने बना लिए तूने। तूने तो यह सोचना था कि 2 घंटे तो मैंने, मेरे 24 घंटे में है ही नहीं, ये तो ईश्वर के, इसको मैं अपने स्वार्थ में कैसे लगा सकता हूं। सोचने का तरीका तो यह होना चाहिए था, 22 घंटे का दिन ईश्वर ने दिया है संसार के लिए, तो उसमें मैंने अपना प्रोग्राम बनाना था, मैंने बेईमानी कर ली, उसमें से टाइम ईश्वर मुझे काट लिया, वो विश्वास में लगा दिया। ये सोचने का तरीका है मेरा। फिर कहता हूं मैं बड़ा होशियार आदमी, बड़ा प्रेमी आदमी हूं, जिंदगी की होशी नहीं, बेहोश जिंदगी जी रहा हूं, और बिल्ला ये लगा रखा कि मैं होश में। तो महाराज जी ने आयु के हिसाब से घंटे भी बढ़ा दिए अभ्यास कि जैसे जैसे आयु बढ़ेगी इसकी बुद्धि तीव्र होगी, इसके अंदर होश बढ़ेगा, तो खुद ही जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए टाइम बढ़ाएगा, ये जो लेस इंपॉर्टेंट है उसके लिए टाइम कम करेगा। ये मैं तो बिगड़ा हुआ मन लेके पैदा हुआ हूं, बिगड़े लोगों के बीच में पल रहा हूं और बिगड़े समाज से निकल कर रहा हूं, तो यही होना है जो मैं कर रहा हूं। कहां मुझे सत असत का ख्याल लेगा, फिर 20 साल बाद भी यही कंप्लेंट करते रहूंगा, सोचता तो बहुत हूं लेकिन क्या करूं, गलतियां वही होती रहती हैं। सत्य यह है कि तूने सोचा ही ठीक नहीं है, तूने कोई निर्णय ही नहीं किया, तूने कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया चलने का, पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है। तो तुझको बचाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, याद रख। तूने मौत का ही सामना करना है और 5 विकार को बढ़ाकर इस संसार से विदा होना है। और विदा कहाँ होना है, ये देह छूटेगी, नई देह तेरी खड़ी हो जाएगी और देह के साथ संसार भी खड़ा हो जाएगा। तो बचपन से ये 5 विकार का दुख लेके तू पैदा होगा, तो अगले जन्म में तेरी क्या दुर्दशा होने वाली है तू खुश हो। इसलिए बड़ा होश में रहकर ये जीवन जीने की जरूरत है। इस विज्ञान को 24 घंटे याद रखने की जरूरत है कि अंतर्यामी ईश्वर इस जिस्म की जान है, उसके आधार पर यह जीवन चल रहा है। उसको जानने के लिए, उससे भेंट करने के लिए ये मनुष्य जन्म, मनुष्य देह मुझको दी गई है। और सांसारिक जीवन है ये 5 विकार बहाने वाला जीवन है, इसीलिए इसमें मैंने जिंदगी बर्बाद नहीं करनी है। यदि काश मैं यदि सुधर गया किसी तरह से, तो मेरा एक आदर्श जीवन बच्चों के सामने तो होगा, पापा की याद आएगी उनको कि वो समझौते नहीं करते थे, सांसारिक कष्ट सहन कर लेते थे लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं करते थे, संसार का काम छोड़ देते थे लेकिन ईश्वर पूजा नहीं छोड़ते थे। तो ये जीवन जी के आपके अंदर चैन भी तो पैदा होगा, फिर तो बच्चों को उस चैन की भी याद होगी। हम कितने बेचैन हो जाते थे कोई दुर्घटना घटती थी संसार में, पापा बेचैन नहीं होते थे, तो आपका चरित्र भी तो याद आएगा उनको, तो वो उनका मार्गदर्शन करेगा। जैसे आपको आपके गुरु का चरित्र मार्गदर्शन कर रहा है, गुरु का जीवन मार्गदर्शन कर रहा है, आपका जीवन आपके बच्चों का मार्गदर्शन करेगा भविष्य में। इसलिए वो समाज के लिए भी सुखदाई है, परिवार के लिए भी सुखदाई है, मेरे अपने लिए तो सबसे पहले सुखदाई है। इसलिए भूल कर भी ये बहानेबाजी ना करें कि क्या करें, सब समझते हैं, इच्छा भी है हमारी चलने की, लेकिन क्या करें, वो संसार में बस गलतियाँ करते ही रहते हैं, ये बहानेबाजी। फैक्ट ये कि हम चलते ही नहीं, चलने में हम सिंसियर नहीं। यदि सिंसियर होते तो आपका स्वभाव कब का बदल गया होता, आपकी बुद्धि में विवेक कब का जागृत हो गया होता। इसीलिए होश में चले, तभी इन विकारों से बच सकते हैं और जीवन की बर्बादी से बच सकते हैं, और कुछ ईश्वर भक्ति करके मार्ग जीवन का तय करके जिंदगी को सफल कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम।